नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रुपये में लगातार गिरावट का दौर जारी है। मंगलवार को बाजार खुलने के साथ ही भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और 80 रुपये प्रति डॉलर के पार निकल गया। भारतीय रुपये में गिरावट ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने के लिए इस हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक की ब्याज दर बढ़ाने के लिए बैठक होने जा रही है। ब्लूमबर्ग ने जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि रुपया आज 79.9863 के स्तर पर खुला, जिसके बाद तुरंत रुपया 80.0175 के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट के साथ 79.98 के स्तर पर बंद हुआ था। कल के कारोबार के दौरान 80 रुपये प्रति डॉलर के पार गया था, लेकिन 80 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे बंद होने में सफल हुआ था। रुपये की ओर से 80 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ने के बाद कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बाद रुपये में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें, इस साल रुपया डॉलर के मुकाबले 7% से अधिक गिर चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी और इंडियन ऑयल ने पेट्रोलियम कंपनी की आगामी परियोजनाओं की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने को लेकर समझौता किया है। बिजली कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एनटीपीसी और इंडियन ऑयल ने संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए सोमवार को यहाँ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये संयुक्त उद्यम इंडियन ऑयल की रिफाइनरियों की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। बयान के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने इंडियन ऑयल की रिफाइनरियों के लिए अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए गठजोड़ किया है। एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने बयान में कहा, एक साझा उद्देश्य के लिए दो प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम टीम वर्क और गठजोड़ का बेजोड़ उदाहरण है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि उसकी योजना दिसंबर 2024 तक अपनी रिफाइनरियों के लिए अतिरिक्त बिजली ज़रूरत का 650 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं। बैंक की वित्तीय सेहत खराब होने के मद्देनज़र केंद्रीय बैंक ने ये कदम उठाया है। बैंक के ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की निकासी की सीमा लगाई गई है। इन अंकुशों के बाद सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना ऋण नहीं दे सकेगा, कोई निवेश नहीं कर सकेगा और नई जमा नहीं स्वीकार कर सकेगा। रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि बैंक के ग्राहक अपनी बचत और चालू खातों से 15,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। बैंक पर ये अंकुश 6 माह तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि रायगढ़ सहकारी बैंक को जारी निर्देशों का आशय उसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है। नेपाल सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी को 7 अरब नेपाली रुपए का ऋण देने का फैसला किया है। सरकार ने देश में ईंधन की पर्याप्त सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के मद्देनज़र सोमवार को ये फैसला किया। मंत्रिपरिषद की 15 जुलाई को हुई बैठक में नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को ये राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। कंपनी को ये ऋण IOC को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में समायोजन के कारण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दिया गया है। नेपाल की पेट्रोलियम कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि NOC 31 अरब नेपाली रुपए के बकाया को कम करने के लिए IOC को लगभग 17 अरब नेपाली रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है। NOC के अनुसार उसे वर्तमान में IOC को 31 अरब नेपाली रुपए का भुगतान करना है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के उप प्रबंध निदेशक नागेंद्र शाह के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को NOC 10.5 अरब भारतीय रुपए का भुगतान करेगी, जो 16.8 अरब नेपाली रुपए के बराबर है। इस भुगतान के बाद बकाया राशि घटकर 14 अरब नेपाली रुपए रह जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के अल्पकालीन आयात के लिए अपनी पहली निविदा रद्द कर दी है। इस निविदा में अडानी एंटरप्राइजेस सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी थी। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। अडानी एंटरप्राइजेस को अल्पकालीन कोयला आयात के लिए चुना गया था। कंपनी ने 24.16 लाख टन कोयले के आयात के लिए करीब 17,000 रुपये प्रति टन की बोली लगाई थी। हालांकि 60 लाख टन कोयला आयात के लिए मध्यम अवधि की निविदा के तहत पीटी बारादया एनर्जी ने अडानी समूह से 2,000 रुपये प्रति टन कम की बोली लगाई थी। सूत्रों ने कहा कि कोल इंडिया ने 8 जुलाई को निदेशक मंडल की बैठक में 24.16 लाख टन की अल्पकालीन निविदा को रद्द करने का निर्णय किया। साथ ही पीटी 12 दया एनर्जी से मध्यम अवधि की निविदा के तहत ईंधन की आपूर्ति करने को कहा है। इस बारे में अडानी एंटरप्राइजेस से प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया। कोल इंडिया ने 9 जून को 24.16 लाख टन कोयले के आयात के लिए निविदा जारी की थी। इसका मकसद देश में बिजली घरों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करना था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।